And then Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, khawateen. हम जो यहाँ इस बार को इकट्ठे होते हैं उसका मकसद ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो जाए और उन एक्सचेंज ऑफ व्यूज के नतीजे में हम एक दूसरे से सीखें, क्योंकि डिस्कशंस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान डिस्कशन के जरिए एक दूसरे से सीखता है। और पढ़े लिखे महज़ब लोगों के दरमियान डिस्कशन के कुछ आदाब हैं जिनको ऑब्जर्व किया जाता है कि हम डिस्कशन के दौरान ना तो पर्सनल हो जाएं, ना किसी ऐसे पॉइंट को रेस करें जिससे किसी के ऐबों पर उंगली उठ रही हो, किसी की ज़ात पर उंगली उठ रही हो, किसी की तौहीन हो रही हो, इसकी एहतियात कर ली जाती है। तो ये इकट्ठे होने का सिलसिला जब कुछ साल पहले शुरू किया था तो उसमें यही एक मकसद था कि हम बैठ के एक्सचेंज ऑफ व्यूज के जरिए से, डिस्कशन के जरिए से एक दूसरे से सीखेंगे हम सभी। और इसीलिए मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि साहब जो जाती इश्यूज हैं उनको हम यहाँ नहीं टेकअप करेंगे, उसके लिए एक बजे के बाद जो मुलाकात होती है जिसमें और बकौल अशफाक साहब के कि मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है लेकिन इतनी शिद्दत से मेहनत कोई नहीं करता जितनी तुम करते हो, कि पहले आदमी से लेके आखिरी आदमी तक बैठे रहते हो और हर एक को इंडिविजुअली मिलते हो। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं तन्हाई में मिल लूँ ताकि हम बड़े बेफिक्र होकर अपनी ज़ाती बात को डिस्कस कर लें। और दूसरी कोशिश मैंने यही की कि एक एतमाद आपके दरमियान ये पैदा हो जाए कि हम इस शख्स के पास जो भी गुफ्तगू करते हैं वो गुफ्तगू ख़त्म होने के साथ ही भुला दी जाती है, कहीं दोबारा कोट नहीं होती, ना कहीं उसका ज़िक्र होता है, चाहे हालात कुछ ही क्यों ना हो जाए। लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद कभी कभी कुछ ज़ाती चीज़ें रख दी जाती हैं यहाँ, उस पर एहतजाज बहुत होता है और उस एहतजाज को मैं भुगतता हूँ कि लोग मेरे पास आके उस पर यही टेकअप करते हैं कि साहब हमारा वक्त ज़ाया होता है, जो इंडिविजुअल मामलात आपको दे दिए जाते हैं आप उस पर बात करते हैं, या वो मामलात जो पहले से डिस्कस हो चुके हैं उनको हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो आज ये फिर किसी साहब ने ये अपनी ज़ाती चीज़ यहाँ रख दी है तो मैं जवाब तो इसका पेश कर देता हूँ आपकी खिदमत में, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ़ लाते हैं उनके इंटरेस्ट में हम अपनी ज़ाती मामलात को टेकअप ना करें। तो کسی صاحب نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے اور میرے بارے میں فرمایا کہ آپ میرے خواب میں تشریف لائے تھے، خواب میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں. یہ خوب ہے، زندگی میں کبھی کسی نے کچھ دیا ہی نہیں. میں تو خوش ہو رہا تھا کہ خواب میں مجھے دے دیے، لیکن کہ کچھ درود شریف کے کہہ کر دیتا ہوں اور کچھ اپنی اکیڈمی کی طرف سے. تو اس مہینے میں درود شریف کی محفل کروانا بھول گیا تھا، تو خواب کے بارے میں رہنمائی کر دیں. جن دنوں یہاں خواب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ خواب کی تعبیر عام طور پر کچھ کی کچھ ہوتی ہے. خواب دکھائی کچھ دے رہا ہوتا ہے، اس کی اصل تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. اب یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے، اس میں چونکہ آپ درود شریف کی محفل کرانے میں ناغہ کر گئے، تو یہ ایک طرح سے آپ کو ریمائنڈر آ گیا کہ آپ درود شریف کی محفل کرانے میں ناغہ مت کیا کیجیے. تو درود شریف کی محفل جتنی جلد آپ سے ممکن ہو وہ کرا لیجیے، تو پھر یہ ریمائنڈر اس طرح کے نہیں آئیں گے. یہ ریمائنڈر تھا اور کچھ نہیں ہے. اب دوسرا انہوں نے فرمایا ہے کہ میں بیت ہونا چاہتا ہوں. بھائی، میرا نفس تو بہت خوش ہوگا اس بات سے کہ کوئی آدمی میرے ہاتھ پہ بیت ہو گیا. میں بھی لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ میرا ایک مرید ہے، لیکن بیت کے سلسلے میں ایک چیز یاد رکھیے. کئی بار میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ یہ ایک معاہدہ ہے، اصل میں ایک ایگریمنٹ ہے جو جن کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر رہے ہیں ان کے اور آپ کے درمیان. اور دنیا بھر میں ایک قانون اور قاعدہ ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو یک طرفہ ہوں ان کو دنیا کی کوئی عدالت تسلیم نہیں کرتی ہے. ایگریمنٹ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے جس میں دونوں کی ذمہ داریاں کلیئرلی مینشن کی ہوتی ہیں. اگر ایک کی ذمہ داریاں مینشن کی گئی ہوں ایگریمنٹ میں اور دوسرے کی ذمہ داریاں کچھ بھی نہ ہوں ایگریمنٹ کے تحت، تو وہ قانون کی نظر میں، دنیا کی ہر عدالت کی نظر میں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. تو بیعت بھی ایک ایگریمنٹ ہے جو آپ کسی ساتھ، جن کے ہاتھ پر آپ بیعت کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں آپ. تو اس میں دو طرفہ ذمہ داری ہے. جو صاحب آپ کو بیعت کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں جو علم عطا فرمایا ہے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کو سکھا دیں، آپ کی تربیت کر دیں. جو ادب آداب دین کے تحت ہیں وہ آپ کو سکھا دیں، آپ کی سفر پر نظر رکھیں، اور جہاں آپ کا پاؤں کہیں بہکنے لگے تو وہ فوراً آپ کو کندھے سے پکڑ کے ہلا دیں، جگا دیں کہ یہ غلطی ہونے لگی ہے، اس سے بچ جائیں آپ. یہ ان صاحب کی ذمہ داری ہے جن کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر رہے ہیں. اور بیعت کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہی اس نے بیعت کی تو وہ ایک معاہدہ کر رہا ہے کہ اس وقت سے، فرام ناؤ آن ورڈ، میں اپنی مرضی استعمال نہیں کروں گا، میں آپ کے کہے پر چلوں گا. چونکہ بیعت آپ اس آدمی کے ہاتھ پہ کرتے ہیں جو بہت نیک ہوتا ہے، تقویٰ میں کافی آگے گیا ہوا ہوتا ہے بندہ، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ سے جو کچھ بھی وہ کہے گا وہ دین کے عین مطابق ہوگا، کہیں دین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. وہ تو بیعت کرنے والا یہ کمٹ کر رہا ہے، और बैत जिसके हाथ पे की गई है वो ये कमिट कर रहा है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो मेरे जैसे आदमी के हाथ पे बैत करके दो जगहों पे नुकसान में चले जाएंगे आप बहुत। एक तो ये है कि मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूं, तो मैं आपको जो कुछ सिखाऊंगा वो कोई ज्यादा अच्छी बातें नहीं होंगी, ऐसी ही होंगी जैसा मैं खुद हूं, वही गुनाह की बातें और फस्क की बातें। तो ऐसे आदमी के पास चाहिए जो नेक हो, अच्छा हो, भला आदमी हो, ताकि उससे जो कुछ सीखें वो बहुत आला दर्जे की बातें हों, आपकी तरबियत ऐसी हो कि लोग देख के आपको अशश कर उठें कि इंसान है ये। वो मेरे यहां मुमकिन नहीं होगा क्योंकि मैं बजाते खुद अच्छा इंसान नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि तरबियत करने के लिए, इल्म सिखाने के लिए वक्त की बड़ी जरूरत है। तो मैं रफ्ता रफ्ता हफ्ते में 4 दिन तो पहले ही पब्लिक को दे बैठा। अब मैं सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे मेरा सफर में गुजरता है इस्लामाबाद से यहां आते हुए। 4 दिन तो हफ्ते में मेरे पब्लिक के नाम पर चले जाते हैं। तो मेरे पास 3 दिन रह जाते हैं, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इन 3 दिनों में मुझे चूंकि अपने रोजगार के मामलात भी देखने होते हैं, फैमिली के मामलात देखने होते हैं, बच्चों को देखना होता है, तो वो टाइम नहीं होता मेरे पास एक लम्हे का भी। तो नतीजा क्या होता है कि आप इग्नोर होते चले जाएंगे, नेग्लेक्ट होते चले जाएंगे, आपकी तरबियत नहीं हो पाएगी। और मेरे सर तो वैसे ही मेरे अपने गुनाहों का बोझ बहुत है, एक और गुनाह मेरे सर आ गया कि एक आदमी ने मेरे स्पुर्द किया किसी अपने आप को और मैं उसकी तरबियत ना कर सका, उसके लिए मैं आंसरेबल हो जाऊंगा अल्लाह को। इसलिए मैं हर एक से माफी मांग लेता हूं कि भाई बैत के लिए किसी भले आदमी को जाके देख ले जो आपको पूरा वक्त दे सके। तो मेरी गुजारिश आपकी खिदमत में यह है कि आप देख लीजिए, दुनिया भरी पड़ी है नेक लोगों से, तो किसी नेक और भले आदमी को देख के उसके हाथ पे बैत कर लीजिए ताकि आपकी तरबियत हो जाए। ये किसी साहब ने सवाल किया है, वो ही अपनी चूंकि इंडिविजुअल मुश्किल है, लेकिन चूंकि सवाल कर दिया तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि ये कुछ मेरी कोताही का जिक्र किया हुआ है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ूँगा। एक शख्स टोकन हासिल करता है मगर थोड़ा लेट होने की वजह से दिल गिरफ्तार अफसरदा वापस भेज दिया जाता है, क्या ये तरबियत का हिस्सा है, सब्र का इम्तहान है, तकदीर का मामला है, या आपकी तरफ से मैसेज है कि अभी तुम इस काबिल नहीं? और ये क्या ये मुमकिन है कि अपने चंद लोगों को सबसे आखिर में मिलने का शर्फ दे दिया जाए? सब बात ये है कि आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ वक्त मुकर्रर होता है कि आपने 9 बजे तशरीफ लाना है और 5 बजे आपने चले जाना है। नौकरी मैंने भी सारी उम्र की, अब भी कर रहा हूँ, तो मैं अगर लेट जाता हूँ तो वो डिपेंड करता है कि मेरा बॉस मुझे क्या समझता है। तो अगर कहीं वो धोखा खा रहा है मुझसे कि मैं कोई भला आदमी हूं, तो मेरे अंदर दाखिल होते ही ऑफिस में वो सिर्फ घड़ी देखेगा। अब उसके दिल में तवक्को ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं सरफराज साहब, तो मैंने जो घड़ी देखी है ये मेरे इस मैसेज को रिसीव कर लेंगे लाउड एंड क्लियर, और कल से लेट नहीं आएंगे। वक्त मुकर्रर इसलिए किया जाता है, डॉक्टर है उसका टाइम मुकर्रर है कि शाम वो 4 बजे से 8 बजे तक बैठेगा, वो टाइम इसलिए उसने मुकर्रर किया हुआ है। तो 8 बजे के बाद जो साहब जाएंगे उनको वो टोकन नहीं देंगे डॉक्टर साहब, लोग मायूस होकर वापस जाएंगे। कसूर उस डॉक्टर का नहीं है, कसूर असल में मेरा है जो मैं लेट जा रहा हूं, वो तो अपने असूल पर कायम है बंदा। हां 8 बजने में मैं अगर 15 सेकंड पर भी गया, 5 सेकंड पर भी चला गया तो वो मुझे टोकन न दें डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब का फॉल्ट है। लेकिन जो ही 8 बज गए और मैं गया तो उन्होंने मुझसे पोलाइटली मुस्कुराते हुए कहा कि शाह साहब कल तशरीफ लाइएगा, आज तो 8 बज गए। अब मैं अगर वहां, ये हुआ है जिंदगी में कई बार कि बाज़कात कुछ ऐसे फैक्टर से, अगर अव्वल तो मुर्शद ने सिखाया यही था वक्त की पाबंदी, बावजूद इसके कि दुनियावी तौर पर तालीम याफ्ता नहीं थे मेरे मुर्शद, लेकिन वक्त के इंतहाई पाबंद, जिसको हम कहते हैं कि ही वुड गो बाय सेकंड्स, इस तरह की पाबंदी थी। एक दिन सिर्फ मुझे चाय खत्म करते करते 1 मिनट ज्यादा लगा था, मुझे धड़का तो था कि अब जूते पड़ेंगे, मैं समझा शायद शाह साहब की घड़ी कहीं 1-2 मिनट पीछे है, तो वो नोटिस नहीं हुआ कि 1 मिनट ज्यादा हो गया है। लेकिन जब हम मस्जिद से जुमा पढ़ के निकले तो कहा कि आज तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार मैं मस्जिद में 1 मिनट लेट पहुंचा हूं। तो बात यह है कि जो वक्त मुकर्रर है अगर हम उस पर जाते हैं तो जो आपको टोकन नहीं दे रहा वो अपनी जगह दुरुस्त है, इसलिए कि वो वक्त तो इसीलिए मुकर्रर किया जाता है ना। अगर डॉक्टर साहब 8 बजे लास्ट टाइम अपना मुकर्रर करें तो 8:30 भी कोई हिसाब आ गया टोकन दे दिया, 9 बजे कोई आ गया टोकन दे दिया, तो फिर तो उन्हें वो तख्ती नहीं लगानी चाहिए वहां। बाकी सबर का इम्तहान बिल्कुल नहीं है। हाँ ये कह लीजिए कि तरबियत हो जाती है कि एक बार अगर मैं यहाँ आऊँ कैंटोनमेंट से और बाहर बैठे हुए साहब मुझे कह दें कि वक्त ख़त्म हो गया आज तो नहीं आप जा पाएंगे, तो जैसे मुर्शिद साहब ने तरबियत की है मैं तो कहके लगाऊंगा चला जाऊंगा। लेकिन उस कहके के पीछे एक सबक सीख रहा हूं मैं, वो तो दिखाने को मैंने कह कह लगा दिया लेकिन दर हकीकत मैं सबक सीखूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं वक्त से पहले आऊंगा ताकि मुझे ये सुनना ना पड़े। तो वैसे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो सिर्फ उनकी शक्ल देखी, आपने घड़ी का टाइम देखा, दिल रिसीव द मैसेज, आप तक आएंगे नहीं वहीं से वापस जाएंगे। आप बुलाएं भी कि हाँ कैसे आए, कि नहीं मैं लेट हो गया फिर आऊंगा, अब तो मेरा लेट, वो खुद कह देंगे आपसे। तो ये तरबियत का हिस्सा तो हो सकती है लेकिन सबर का इम्तहान नहीं है। सबर का इम्तहान वहां आता है जब आपके साथ कोई जुल्म किया जा रहा हो, कोई ज्यादती की जा रही हो। तो अगर आप हंस खेल के हंसते हुए कह देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, वो सब्र का इम्तिहान है और ट्रेनिंग भी है वो, कि दूसरों को अपनी जात पर कैसे तरजीह हम देते हैं, वो सब्र है। और तकदीर का मामला बिल्कुल नहीं है। तकदीर रब ताला ने ये छोटी छोटी बातें हमारे अपने ऊपर छोड़ दी हैं। वो इतनी छोटी बातों में नहीं करता, वो तो हमारे हाथ में दे दिया कि जैसे चाहो लिख लो अपनी तकदीर। तो जो लोग पंक्चुअल हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनकी तकदीर में ये लिखा ही नहीं है, वो तो तकदीर खुद लिख रहे हैं कि मैं पंक्चुअल हूँ, अपने टाइम पर जाता हूँ, टाइम पर आ जाता हूँ, तो कहीं फेलियर नहीं आता मेरा। तो हम तकदीर अपने हाथों से लिख रहे होते हैं। और ये जो चौथा आपने लिखा कि आपकी तरफ से मैसेज है कि अभी तुम इस काबिल नहीं, किस काबिल नहीं, ये बात आप जैसे पढ़े लिखे समझदार आदमी को कहने के लिए जरूरी है कि कहने वाला आपसे ज्यादा तालीम याफ्ता, आपसे ज्यादा इल्म वाला, आपसे ज्यादा जानने वाला, आपसे ज्यादा महज़ब हो, जो मैं नहीं। तो मैं आपको कैसे मैसेज दूंगा कि अभी आप इस काबिल नहीं। मुझे तो आपकी काबिलियत उसी वक्त पता लग सकती है जब मेरे अंदर वो पैमाना हो जिस पे मैं किसी की काबिलियत को मैयर कर लूं। तो वो पैमाना तो उसी वक्त इंसान के हाथ में दिया जाता है जब वो एक मकाम पर पहुंच जाए। इन्हीं साहब का एक और सवाल है कि आपने फरमाया था कि जब किसी को मुर्शिद मान लिया जाए तो क्यों, क्या, कैसे नहीं सोचना चाहिए और कंप्लीट ताबे फरमानी करनी चाहिए। तो क्या कोई कन्फ्यूजन हो तो ये भी ना पूछा जाए ना। देखिए बात यह है कि सवाल सवाल की नेचर में फर्क है। ये जो मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि मुर्शिद के सामने क्यों, कब, कैसे, किस तरह, वो लफ्ज आप किस तरह छोड़ गए, ये एक डिफरेंट नेचर ऑफ क्वेश्चन है। अगर मेरे मुर्शिद मुझे ये फरमाएं तपती धूप में कि जाओ 10 मील दूर वहां से फलां चीज ले आओ और ये कह देंगे ऐसा करो तुम गाड़ी पर नहीं जाओ, बाइसिकल ले लो, उस पर चले जाओ। अब मैं कभी ये नहीं पूछूंगा मुर्शिद साहब से कि इसके पीछे मसलहत क्या है। मेरी गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर मौजूद है, मैं आराम से उसके साथ बैठता हूं और 10 मील दूर है, फौरन वापस आ जाऊंगा। तो बाइसिकल पर जाऊंगा, वक्त लगेगा और हो सकता है ये मुमकिन ना हो कि मैं 10 मील बाइसिकल जाने में और बस 10 मील चलाने में उस काबिल भी ना हो मेरी सेहत। अब यहां पर वो जो मैंने कहा कि क्यों, कब, कैसे, किस तरह, ये सवाल कि मैं मुर्शिद साहब से ये पूछने बैठूं कि हुजूर मैं गाड़ी पर क्यों ना जाऊं, मैं तो फौरन जाऊंगा, ज्यादा 15 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा और 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा, ये नहीं किया जाना चाहिए। मुर्शिद ने कहा कि बाइसिकल पर जाओ, ठीक है, जो मसले है वो जाने, उनका काम जाने, मुर्शिद हैं, ये मेरा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि खाना यहीं छोड़ दो, अभी ये काम करो पहले। तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा, या एटलीस्ट आई एम नॉट सपोज टू टेल हिम के जी मैं जरा खाना खा लूं। बस ठीक है, कह दिया, खत्म हो गई बात वहीं पे। लास्ट नवाला है जो मुर्शद साहब की जुबान से बात निकली है, इस सेंस में है वो। लेकिन जो कंफ्यूजन्स है, एक कंफ्यूजन ये है कि वो मुझे फरमा रहे हैं कि बाइसिकल पर चल जाओ, तो मुझे मालूम है कि आगे सड़क टूटी है, मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा उस सड़क को, तो जब तक कि मैं उस गैप को कवर ना करूं मैं दूसरी तरफ जा नहीं सकता, ये कंफ्यूजन आ जाएगा। तो मैं कह दूं कि हजूर जो हुक्म मैं अभी जा रहा हूं, दरमियान में एक गैप आता है उसको क्रॉस करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। अब मैंने अपने मुर्शिद साहब से पहले ही कहा कि हजूर मैं अभी जा रहा हूं, अभी ये कंफ्यूजन है मेरा कि वो उसमें गैप को कैसे क्रॉस करूंगा, तो उसके बारे में मैं बड़े मुअद्दबाना तरीके से कर दूंगा कि हजूर वो जो दरमियान में गैप है तो उसको क्रॉस करना जरा मुश्किल हो जाएगा, तो ये फरमा देंगे कि वो मेरा हेडेक है तुम्हारा नहीं, तुम जाओ। मैं नहीं पूछूंगा जी कैसे, साइकिल पकड़ूंगा चला जाऊंगा, वहां जाके किनारे पे खड़ा हो जाऊंगा कि अब ये मसला हल करना मेरे मुर्शिद का काम है, खुद करेंगे, मैं क्यों करूं। तो वो कंफ्यूजन पर जरूर सवाल पूछिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। कंफ्यूजन पैदा होता है इल्म पर कि एक बात अगर मुझे समझ नहीं आई है अगर मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि तुम सवाल से पहले इतने बजे दो नफल पढ़ा करो, न मैंने कुरान में कहीं देखा है न कहीं हदीस में पढ़ने को आया न किसी बुजुर्ग के इस मामूल को मैंने कहीं पढ़ा, तो वहां मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि कहीं इन्होंने रात के 10 तो नहीं कह दिए, बेख्याली में ये सुबह के 10 कह रहे हैं या 10 के साथ स्पेसिफाई नहीं कर रहे सुबह है या रात है। तो मैं फौरन सवाल पूछ लूंगा कि हजूर ये 10 जो आपने फरमाए 10 बजे, इससे मुराद आपकी रात 10 बजे है या सुबह 10 बजे है? यह सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए, इसलिए कि इससे इल्म में इजाफा होता है। तो अगर मेरे जहन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि न इसे कुरान में कहीं पढ़ा मैंने, न मैंने हदीस में पढ़ा, न किसी मैंने बुजुर्ग का ये मामूल पढ़ा किताब में कि 10 बजे सुबह के 2 नवाफिल पढ़ लिए जाए, तो मैं बड़े अदब से कि उनसे ये पूछ लूंगा कि हजूर ये 2 रकात नमाज को बहुत ही आप खास नमाज मुझे बता रहे हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि ये सुनने में कभी आई नहीं है, तो मुझे एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर वो ये समझेंगे कि मैं अभी इल्म के उस मकाम पर नहीं हूं कि इसको इतनी सराहत के साथ बयान किया जाए और मैं उसको एब्जॉर्ब कर जाऊं, तो कह देंगे कि नहीं तुम जैसे मैं कह रहा हूं वो करो, वो बाद में बताएंगे। कन्फ्यूजन जहां आ जाए, आपको क्लेरिफिकेशन कोई चाहिए है, वो जरूर पूछिए। लेकिन ये जो मैंने अर्ज किया था कब क्यों कैसे किस तरह, वो उस सेंस में था जो मैंने आपसे अर्ज किया। ये इन्होंने इसी सवाल के हिस्से में जो मैं ओमिट कर गया वो कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी, पढ़ देता हूँ, उसकी ज़रूरत अब है नहीं। उन्होंने फरमाया कि ये भी ना पूछी जाए, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि बज़ाहिर एक ये लफ्ज़ नहीं पढ़ पा रहा मैं, समझ रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, मगर वो अल्लाह के हुक्म से था। इसके बरक्स आज के दौर में मासूम मुसलमान शोबदाबाजों के साथ भी ऐसी अकीदत कायम कर लेते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, ज्यादातर लोग वो हैं जो मेरी तरह दुकान सजा के बैठे हैं ढोंग रचा के। तो जब हम किसी के पास जाते हैं बैत करने के लिए, मैं इसीलिए एक बात पर जोर देता हूं कि बैत करने में जल्दी मत कीजिए। जहां आपका दिल जमता है वहां जाना शुरू कर दीजिए। दो चार महीने देखिए, अगर आप समझते हैं कि दिल आज भी मेरा मुतमईन है और मेरा दिल चाहता है कि मैं इनके हाथ पे बैत करूं, तो फिर बैत कीजिए। ये हम जो मार खा जाते हैं, हम अपनी जल्दबाजी में मार खाते हैं कि हम कहीं गए, बातचीत से मुतासिर हुए, तो वहीं उनसे कहा कि मुझे बैत कर लीजिए। जब वहां जाना शुरू किया दो चार महीने के बाद बदजन हो गए और फिर हम जान छुड़ाते फिरते हैं। बैत में जल्दी मत कीजिए, कभी जाइए परखिए। और ये बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि इस बात से मुतासिर मत होइए कि उन साहब ने फलां करामत दिखा दी है या उन्होंने कुछ माफ़ोकुल फितरत कुवतों का इजहार किया है आपके सामने। हमें ये याद रखना चाहिए कि औलिया कराम करामत जाहिर नहीं करते, सरजद हो जाती है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। करामत जाहिर करने वाला फकीर जलील ख्वार हो जाता है, रुस्वा हो जाता है, इसलिए फकीर इससे दूर भागते हैं। लेकिन करामत सरजद होती है, बेइख्तियार है कि वो करामत आपको दिखाई दे जाए। इसी तरह जो सही फकीर है वो आप पर कभी ये जाहिर नहीं होने देगा कि मैं आउट ऑफ सीजन फ्रूट हवा में हाथ बढ़ा के फेर के पकड़ के आपको दे दूं कि ये खा लीजिए। समझ लीजिए कि वो खुद नुमाई में मुबतला है बंदा, वो फकीर नहीं हो सकता। जिस बात पर नजर रखिए आप, वो ये है कि वो सुन्नत की पैरवी करता है या नहीं करता। उसकी जो जाती जिंदगी है उसमें सुन्नत पर की पैरवी करता है या नहीं करता है। फकीर कभी नुमाया होकर नहीं बैठना चाहेगा, आपके साथ बैठेगा। अगर खुद कुर्सी पर बैठा है और आप तशरीफ ले गए हैं उसके पास, तो आपको अपने सामने कुर्सी पर बिठाएगा। जब वो चलेगा तो ऐसी बेतकल्फी से कि नया आदमी ये भांप नहीं ना पाए कि वो कोई नुमाया हैसियत का मालिक है। वो आपके बराबर चलेगा, आपके साथ गपशप करता हुआ, इसलिए कि सुन्नत यही है। उसमें कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि वो दूसरों को हकीर समझ रहा है। आपको तासुर यही मिलेगा कि वो आपको अपने आप से बेहतर जानता है, कि आप बेहतर हैं उससे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम दूसरों से इस तरह से मिलो कि तुमसे मिलने वाला हर आदमी ये समझे कि तुम उसी से ज्यादा प्यार करते हो। तो फकीर जब आपसे मिलेगा तो आपको एहसास यही होगा कि ये शायद मुझसे ही सिर्फ मुझसे ही ज्यादा प्यार करता है, ये सुन्नत है। तो इस पे नजर रखिए कि जहां आप बैत होना चाह रहे हैं वहां सुन्नत की पैरवी होती है कि नहीं होती है। तो आपका फैसला गलत नहीं होगा, वरना यही कुछ होगा कि हम गलत जगह पर चल जाएंगे जहां दिल हमारा बाद में बदजन हो जाए और फिर हम बैत तोड़ने के किस्से में पड़ेंगे। तो जल्दी मत कीजिए बैत के सिलसिले में। इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।